इधर उनकी जो स्त्री थी धुंधली, उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। अब वो धुंधकारी है, अपनी माँ को डांटने लगा, क्वावित्तम तिष्ठति, बताओ धन कहाँ है, या तो बता दो नहीं तो हम लात मार मार करके तुमसे ले लेंगे। माँ ने देखा कि भाई बेटे की लात मैं खाऊं तो मेरा तो खैर है ही, बेटे का कितना बड़ा भारी पतन है। उसी समय में कुएं में जाकर रात्रि में गिर गई और मर गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। आप धुंधकारी सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, उनके ऊपर कोई कहने सुनने वाला नहीं। वेश्याओं के साथ में वो लगे हुए थे ही, सारा घर बार उन्होंने लुटा दिया और इसके साथ साथ वे लोगों के घरों में चोरी करने लगे। उधर उन वेश्याओं ने देखा कि भाई मांगे वो धन हमको लाके देता है, राजा के पास अब शिकायत जाएगी कि हमारे घर में चोरी, वो कहेगा हमारे घर में चोरी, हमारे घर में चोरी। तो राजाओं के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, कहीं हम लोग पकड़ी गई तो हमारा सारा का सारा धन ये राजा ले लेंगे और ये कोई काम नहीं आएगा। तो जितना धन अपने को मिल गया वो तो सुरक्षित रखो और धुंधकारी को मार दो। तो रात्रि में धुंधकारी सोए हुए थे, उन सोए हुए धुंधकारी के गले के अंदर फांसी डाल दी और मुंह के ऊपर जलते हुए अंगारे डाल दिए। धुंधकारी वहीं पर मर गया, खड्डा खोद करके उसको वहीं पर गाड़ दिया और लोगों को कह दिया कि धुंधकारी तो कमाने के लिए गए हैं। इधर वो धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गए और प्रेत बनकर के कभी कहां बेचारे भटकने लगे। प्रेतात्माओं को तो बड़ा कष्ट होता है। न ले भी शरणम क्वापी, कहीं पर भी उसको शरण नहीं मिली धुंधकारी को। देखो ये प्रेत होते हैं, इनका शरीर वायु प्रधान होता है, देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान और मनुष्यों का शरीर पृथ्वी प्रधान और भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। लोग कहते हैं भूत प्रेत दिखते तो नहीं, तो भाई वायु कौन सी दिखती है, हवा दिखती है क्या, हवा नहीं दिखती है। ऐसे ही भूत प्रेतों का शरीर होता है परंतु वो हर किसी को नहीं दिखता है, जिनके संस्कार होते हैं उन्हीं को ही दिखा करते हैं। अब वो बेचारे धुंधकारी प्रेत बने हुए बहुत अशांति को प्राप्त हो रहे थे। उधर गोकर्ण जी को मालूम चला कि भाई हमारे भाई धुंधकारी मर गए हैं, तो उन्होंने उनका जहां जहां जो तीर्थ आया वहां पर उनका श्राद्ध कर दिया। ऐसे श्राद्ध करते करते घूमते घामते गोकर्ण जी एक बार अपने वास्तविक घर पर आए, रात्रि में आकर सो गए। अब सोए तो धुंधकारी की मुक्ति तो हुई नहीं, रात्रि में वही धुंधकारी प्रेत है, वो कभी तो हाथी बने, कभी भेड़ बने, कभी इंद्र बने, कभी आग बने, कभी भैंसा बने। तो गोकर्ण जी ने देखा कि कोई न कोई भूत प्रेत है, दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो भाई, तब वो प्रेत कहने लगा कि देखो मैं आप ही का भाई हूं। देखो प्रेतों में दूसरे से शक्ति मिलती है, जब उनको हम बोलेंगे तब बोलने की शक्ति आएगी, बोल नहीं सकते। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि रात्रि में अंधेरे में हम लोग जाते हो तो किसी आदमी से पहले अपने को नहीं बोलना चाहिए, क्या पता वो प्रेत हो और हमारे बोलने से उसमें बोलने की शक्ति आवे, हम नहीं बोलेंगे तो वो बोल ही नहीं सकता। तो वो जो प्रेत था वो पहले तो बोल सका नहीं, जब गोकर्ण जी ने पूछा और उसके ऊपर जल डाल दिया तब वो बोलने लायक हुआ। उसने कहा गोकर्ण भैया मैं आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, बहुत मेरे असंख्य पाप के जिनके फल से मैं केवल वायु पी के रहता हूं, मुझे बहुत गंदा जल मिलता है, अपवित्र जल मैं पीता हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो रही, जरा कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। अरे तेरे लिए तो मैंने गया जी का श्राद्ध करा दिया, जिन जिन तीर्थों में गया उन उन तीर्थों में हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा कल्याण कहां बाकी रह गया। क्या नहीं नहीं आप एक बार नहीं 100 बार मेरे लिए गया श्राद्ध करा दो, मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से होने वाली नहीं है, और कोई उपाय करो। क्या अच्छी बात है, अभी तो तुम जाओ, प्रातःकाल होगा, बड़े बूढ़े आदमियों से महात्माओं से पूछेंगे, कोई न कोई निर्णय करेंगे। तो वो प्रेत चला गया, धुंधकारी चला गया। अब गोकर्ण जी रात भर सोचते रहे कि भाई हमने तो सुना है कि गया जी का श्राद्ध कर देने के बाद तो कोई प्रेत बिना कल्याण के बसता ही नहीं है, और ये कहते हैं कि तुम चाहे 100 बार कर दो, अब कहां जावे क्या करें। इसी चिंता के अंदर रात बिता दी। प्रातःकाल लोगों को मालूम चला गोकर्ण जी आए हैं तो लोग मिलने लगे। गोकर्ण जी ने भले भले आदमियों से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हमको रात को धुंधकारी मिला है, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ बहुत कष्ट पा रहा है, हमको क्या करना चाहिए। तो कहा कि महाराज जब गया साध से मुक्ति नहीं हुई है तो गोकर्ण जी फिर तो उसकी मुक्ति मुश्किल है। बड़े बड़े विद्वानों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने और कोई उपाय नहीं देखा तो कहा ऐसा करें, हमारे समस्त कर्मों के साक्षी भगवान सूर्य हैं, सूर्य भगवान से पूछा जाए कि महाराज आप बताओ इसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। गोकर्ण जी को सूर्य के शरीर के पालन पोषण में नहीं लगना चाहिए, शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। इसमें हम लोग देखें प्रातःकाल जो अन्न खाते हैं वो सायंकाल तक साफ हो जाता है, सायंकाल खाते हैं तो सुबह तक खत्म हो जाता है। तो खत्म होने की एक परंपरा है, बाल्यावस्था खत्म हुई तो जवानी आई, जवानी खत्म होती है तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा खत्म हो जाता तो आदमी खत्म। इस प्रकार से ये समाप्ति की ओर जाता है। इसमें चतुराई तो इतनी है कि भगवान का भजन कर लेवे, कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, अपने चित्त को भगवान की कथा के अंदर ले जाकर के रख देवे, उसकी निश्चित मुक्ति होती है। ऐसा जब गोकर्ण के सामने धुंधकारी ने कहा, उसी समय में आकाश से देखा कि बड़े दिव्य विमान आए, और विमान आए तो विमान में बैठने वाले और भी दिव्य पार्षद लोग आए। पार्षद लोग आए और आकर के भी धुंधकारी से कहने लगे, धुंधकारी जी इस विमान में आप बैठिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई आप लोग कहां से आए हो? कि हम बैकुंठ से आए महाराज। अच्छा क्यों आए? कि भागवत सुनिए धुंधकारी ने, इसलिए धुंधकारी जी को ले जाने के लिए आए। तो आपका क्या, आपका काम क्या भागवत सुनने वालों को भगवान के वहां ले जाने का है? कि ले जाने का है। तो अत्रिव भयवह संति, सुनने वाले तो बहुत है, एक आप गोकर्ण जी के लिए ही क्यों आए? आप एक धुंधकारी के लिए ही क्यों आए? गोकर्ण जी ने पूछा। तो कहा कि देखो सुना तो सबने है, भागवत सबने सुनी है, लेकिन किसी ने तो घड़ी देखना चालू कर दिया कि अब कब पूरी होवे कथा, कब हम घर जावे, अभी हमारा वो काम बाकी, अभी हमारा वो काम बाकी। तो श्रवणम तु कृतई सर्वई, सबने सुना लेकिन न तथा मननम कृतम, उस भागवत के ऊपर मनन प्राय सबने एक जैसा नहीं किया है, अतः मनन भेद से फल भेद हो गया। और धुंधकारी ने, क्योंकि ये प्रेतियोनि में बेचारे घबरा रहे थे, 7 दिन तक बड़े प्रेम से सुना है स्थिर चित्त होकर, इस कारण से इनका सुनावा इनके काम आया है। तो गोकर्ण जी एक विचित्र बात है, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वो ज्ञान थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, प्रमाद पूर्वक जो सुनावा होता है उसकी भी कोई अवधि नहीं होती। जिस मंत्र में संदेह होता है उस मंत्र से काम नहीं बनता है, और जब करने बैठे हैं और व्यग्रता है, थोड़ी जल्दीबाजी है, तो उस जब से लाभ नहीं होता है। सर्वथा लाभ नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, परंतु जिस लाभ के लिए वो चलता है वो लाभ नहीं होता है। और अवैष्णव हता देश है, और जिस देश में भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं है वो देश किसी काम का नहीं है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, और उचित पात्र को यदि श्राद्ध का अन्न नहीं दिया है, अनुचित पात्र को यदि श्राद्ध का अन्न दे दिया तो श्राद्ध का दान कोई काम आने वाला नहीं है। और हतम अश्रोत्रिय दानम, कोई भी दान दिया है लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण नहीं है तो वो दान हत है, मरा हुआ है। और अनाचारम हतम कुलम, और जिस कुल की जो परंपरा है, जो आचार विचार है, वो जिस दिन आचार विचार नष्ट हो जाएगा वो कुल भी आगे जाकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सुना है लेकिन सुनने में व्यग्रता थी, सुना है लेकिन मन इधर उधर गया था, इसलिए वो सुनावा इनके अभी इतना काम नहीं आ रहा है। गोकर्ण जी हम आपको क्या बतावें, आपके विषय में तो बैकुंठ में भगवान के यहाँ चर्चा चली थी, भगवान स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि आप एक बार फिर लोगों को भागवत सुनाओ। भागवत जितना सुनाओगे उतना ही लोगों को शांति मिलेगी, और वही लोगों की शांति फिर आपके पास आएगी, इसलिए आप बड़े प्रेम से और कथा सुनाओ। इतना कहकर के धुंधकारी जी को लेकर के वे तो चले गए। और इधर गोकर्ण जी ने, फिर सावन का महीना आया और सावन के महीने में फिर दोबारा कथा की, 7 दिन तक वहां पर कथा की। नारद जी महाराज क्या बतावे, उस कथा के अंदर स्वयं भगवान भी वहां प्रकट हो गए, विमानों को लेकर, भक्तों को लेकर भगवान प्रकट हुए, भगवान की बहुत जय जयकार हुई। भगवान ने वहां पर पांचजनी नाम का शंख था, उस शंख को उन्होंने बजाया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान ने उसी समय में जितने श्रोता थे सब श्रोताओं को अपने छाती से लगाया और अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो सारा का सारा स्वरूप सब श्रोताओं को एक साथ दे दिया। सब श्रोता चतुर्भुजी हो गए, वे सब श्रोता किरीट कुंडल धारण करने वाले हो गए, सब के सब घन के समान श्याम वर्ण वाले हो गए और गोकर्ण की कृपा से भगवान के आशीर्वाद से सब दिव्य विमानों में बैठ करके अपने धाम में चले गए। और क्या बतावे, जिन्होंने एक बार गोकर्ण के मुख से भागवत सुन ली थी फिर वे दोबारा यहाँ पर जन्म लेने के लिए नहीं आए। जैसे अयोध्यावासी भगवान के साथ साकेत धाम में पधारे थे और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने योगी दुर्लभ गोलोक में अपने भक्तों को आश्रय दिया, उसी प्रकार से आज गोकर्ण के श्रोताओं ने भगवान का जो दिव्य धाम है उस दिव्य धाम को प्राप्त किया। क्या बतावे, सूर्य चंद्रमा की जहां गति नहीं है ऐसे दिव्य धाम पर ये श्रीमद् भागवत हमको पहुंचाने वाला है। हम आपको इससे ज्यादा और क्या बतावे, वायु पी करके सूखे पत्ते खा करके बड़ी बड़ी तपस्या करके योगी लोग उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थान को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला प्राप्त होता है। ये बड़ा पवित्र इतिहास है और ये इतिहास शांडिल्य ऋषि ने कहा है। चित्रकूट के अंदर रहने वाले शांडिल्य ऋषि हैं, वो यूं बैठे हुए थे और भगवान के ध्यान में थे, ब्रह्मानंद परिप्लुत, ये ब्रह्मानंद में खूब डूबे हुए थे। ऐसे उस ऋषि ने बताया, अरे अरे हम आपको एक बहुत गुप्त इतिहास बताते हैं। उन्होंने ये कथा सुनाई है भागवत की कि भाई भागवत की ऐसी विचित्र महिमा है, लोगों को भागवत सुनाना चाहिए। आख्यान अमेतत परमम पवित्रम, ये बड़ा परम पवित्र आख्यान हमने आपको सुनाया है। श्राद्ध के महीने में यदि इसको सुनाया जाता है तो पितरों को तृप्ति होती है। देखो ये यहाँ भगवान की कृपा से संत महापुरुषों की छत्र छाया में ये जो भागवत का अनुष्ठान हो रहा है, ये तो निश्चित बात है किसी एक व्यक्ति की जजमानी में नहीं है और कोई इसमें एक पक्ष नहीं है, ये सबकी जजमानी में है, सबके सम्मिलित प्रयास से ये कार्य हो रहा है। तो भाई अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, सब लोगों के लाभ के लिए ये जो भागवत कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है, गीता जयंती के महापर्व पर यहाँ भागवत का, रामचरितमानस का, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सत्संग का और रासलीला का जो आयोजन, ये गीता जयंती की संपुष्टि के लिए हो रहा है। महान अनुष्ठान है गीता जयंती महोत्सव, उस महोत्सव के नीचे ये कार्य हो रहे हैं, चाहे भागवत का हो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सत्संग हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे रासलीला का कार्यक्रम हो, ये सब गीता जयंती के नीचे है। अतः ये जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान अपना किसी एक का नहीं है, अपना सबका है, है तो सबका है, नहीं तो किसी का नहीं है। अतः अपनी तरफ से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और किसी निमित्त यदि किसी की भागवत कहीं किसी ने कभी करवाई और अपूर्ण रह गई, अथवा करवाने का संकल्प हो, अथवा किसी प्रकार के मन में भागवत की इच्छा हो, तो वो यहाँ पूरी कर सकते हैं सुन करके। यहाँ अपने सुन लेंगे तो ये भागवत कराने जैसा ही पुण्य की बात है पितरों के निमित्त। अतः श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्त्र महावीर नित्यम सुपाठाद अपुनर्भवंच, आत्म कल्याण चाहते हैं तो भागवत सुने, पितरों की तृप्ति चाहते हैं तो भागवत सुने, बड़ी श्रद्धा से भागवत सुने और सुनवावे। ये सबके लाभ के लिए जो आयोजन हो रहा है इसमें सब बड़ी प्रसन्नता से आ सकते हैं और सबको बड़ा उत्तम लाभ मिले, यही इस आयोजन का सबसे बड़ा तात्पर्य है। तो ये आख्यान की बात बताई। अब सनत कुमार आदि कहते हैं कि देखो जिस समय में भागवत की कथा करनी हो उस समय में अच्छे मुहूर्त में ये कथा करनी चाहिए। विवाह के समय में जैसे हमारे मन में उल्लास रहता है, प्रसन्नता रहती है, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता श्रीमद् भागवत के इस आयोजन में सबको होनी चाहिए। भागवत का आयोजन देखो किन किन महीनों में बता रहे हैं कि भागवत के लिए कोई महीना त्याज्य नहीं है, कोई महीना की इसमें नहीं करे ऐसी बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उत्तम महीने बता रहे हैं कि श्रावण है, भादवा है, आसोज है, मिंगसर है, कार्तिक है, ये बहुत अच्छे महीने, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक, ये बहुत अच्छे महीने हैं। मार्ग शीर्ष है सुचिर नभा, ये मिंगसर का महीना चल ही रहा है और उसमें भी ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, समय भी बड़ा अच्छा है, इसलिए भागवत को अच्छे समय में करना चाहिए। भागवत करने तो उस समय में सबको सूचना दे देनी चाहिए। देखो भागवत कराने का जितना पुण्य होता है उतना ही सबको सूचना देने का पुण्य होता है। अपना काम सूचना देने का है, आवे न आवे उनमें सबको सूचना दे देनी चाहिए कि भविष्यति कथा चात्र, भाई यहाँ कथा होने वाली है, आपको आना चाहिए और ये कहना चाहिए सबको कि भाई भागवत को जो सुनने वाले हैं वो श्रेष्ठ पुरुष होंगे, वही सुनेंगे, हर कोई आदमी तो सुनेगा नहीं, इसलिए सत्पुरुषों का एक बहुत बड़ा समाज इकट्ठा होने वाला है, ऐसे लोगों के दर्शन भी होंगे और भगवान का अनुपम दिव्य चरित्र है उसका भी यहाँ पर गान होगा। इस प्रकार से सबको कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि भाई आप 7 दिन आवे, 10 दिन आवे, 15 दिन आवे, जितने दिन कथा है पूरे दिन रहे तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी, लेकिन यदि बिल्कुल ही नहीं आवे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्षणोत्र सुदुर्लभ है, भागवत में तो एक क्षण भी प्रवेश कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। भागवत को तीर्थों में भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। भागवत करें तो पहले जमीन लंबी चौड़ी हो इसको पहले से ही देख लेना चाहिए, भूमि को पवित्र करके रखना चाहिए, वहां पर एक पंडाल बनाना चाहिए और वहां पर फल फूल आदि खिले हुए हों ऐसा बनाना चाहिए, चारों दिशाओं में 4 ध्वजा होनी चाहिए, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, विरक्त ब्राह्मण है उनको उनका आह्वान करना चाहिए, वक्ता के पास में एक और आसन होना चाहिए जिसमें दूसरा एक सहवक्ता हो। भाई वक्ता के अब शरीर का तो कोई पता नहीं, वक्ता के शरीर में, मुख्य वक्ता के शरीर में जरा सी कोई असमर्थता आ जाए तो दूसरे वक्ता है उस काम को पूरा करें। माने अनुष्ठान की मुख्यता है, व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। वक्ता का उत्तर की ओर मुख रहे तो प्रधान श्रोता का मुख पूर्व की ओर रहे, और वक्ता का मुख पूर्व की ओर रहे तो प्रधान श्रोता का मुख उत्तर की ओर रहे। 2 दिशाएं बहुत पवित्र मानिए, पूर्व और उत्तर। वक्ता को बड़ा विरक्त होना चाहिए, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत को कहने में बड़ा कुशल हो, धीर हो और किसी प्रकार उसके मन में इच्छा न हो, इस प्रकार से तो वक्ता होने चाहिए। श्रोता के लिए कोई शर्त नहीं लगाई है, हो श्रोता के लिए तो ये बताया, चाहे कितना ही पापी क्यों ना वो भी भागवत में आ सकता है, लेकिन वक्ता यदि बहुत विद्वान है लेकिन स्त्रीण है और पाखंड के अंदर निरत है, अनेक धर्म के अंदर भटक रहा है, वो व्यक्ति चाहे पंडित भी क्यों न हो, सुख शास्त्र कथोच्चारे, उसको भागवत कहने का अधिकार नहीं है। भागवत के अंदर जो नियम पूर्वक सुनना चाहते हैं उनको पहले से ही अपने हिजामत वगैरह पहले ही बना लेनी चाहिए, भागवत के नियम के अंतर्गत आने के बाद उनको हिजामत वगैरह नहीं बनानी चाहिए, और अपना जो नित्य नियम है उसको संक्षेप में कर लेना चाहिए, संध्या वंदन वगैरह कर लेनी चाहिए, कथा विघ्न के विनाश के लिए भगवान गणपतिनाथ, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, पितरों को संतृप्त करना चाहिए, माने जो पितर हैं उनको प्रसन्न रखना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण हैं उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे महाराज, मैं संसार रूपी सागर के अंदर डूब रहा हूँ, अपने कर्म के मोह के अंदर मैं इतना कल गया हूँ कि मेरे निस्तार का कोई उपाय नहीं, आप जैसे तैसे कृपा करो, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भागवत की पूजा करनी चाहिए, भागवत को नमस्कार करना चाहिए और भागवत से कहना चाहिए कि हे श्रीमद् भागवत, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं और मैंने मुक्ति के लिए आपको ही परम आधार माना है, आप हमारी मुक्ति कर दीजिए। इस प्रकार से अपने मन में दीनता से भगवान के सामने और भागवत के सामने निवेदन करना चाहिए। वक्ता की पूजा हो और फिर वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मण हो, कथा भंग किसी प्रकार से कथा में दोष न आवे, और जाप्यम 12 अक्षर विद्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का जो मंत्र जाप है उनमें से 1 ब्राह्मण के द्वारा बराबर चलते रहना चाहिए। भगवान का नाम है, ये नाम बहुत मंगल करने वाला है, किसी प्रकार से कथा में कोई विघ्न भी आ जाए तो नाम है उस विघ्न को दूर कर देने वाला होता है। कथा के अंदर कीर्तन भी होना चाहिए। वक्ता को क्या चाहिए कि वक्ता जितने भी श्रोता हैं उन श्रोताओं का हृदय से आदर करे, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, कीर्तन करने वालों का, जितने श्रोता हैं उन सब का आदर करे और मन ही मन से उन सब को नमस्कार करे, प्रणाम करे, और उनके द्वारा आज्ञा को लेने के बाद फिर वे वक्ता है वो अपने वक्ता के आसन पर बैठे। और श्रोता और वक्ता दोनों के लिए बात है, किसी प्रकार की लौकिक चिंता न करे, धन की चिंता न करे, पुत्र की चिंता न करे और कोई व्यापार की चिंता न करे, सर्वथा शुद्ध मति होकर इस कथा को सुने, ऐसा सुनने से उनको बड़ा विचित्र लाभ होता है। कथा कहने वाले को चाहिए कि वो धीर कंठ से उस कथा को कहे, न तो बहुत तेजी से कहे ऊंचे स्वर से, और न बहुत ही मंद मंद में कहे, अपने धीर कंठ से उस कथा को कहता रहे। जहां कथा में विराम आवे वहां कथा में विराम भी देना चाहिए। अब कहते हैं कि भोजन के लिए, कि भाई भोजन कथा के विषय में कथा हो और वहां पर व्रत हो, व्रत से यदि कथा में बाधा पड़ती हो तो व्रत नहीं करना चाहिए, आराम से दो समय भोजन कर सकते हैं। और यदि ज्यादा भोजन करने से, दो बार भोजन करने से आलस्य आता हो अथवा पेट की गड़बड़ी हो तो भाई एक समय भोजन कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ तो साफ कहा है घृत पानम पय पानम, यदि पेट में पछता हो तो खूब घी पी करके भी कथा सुनो, पेट में पछता हो तो खूब दूध पी करके भी कथा सुनो, लेकिन कथा सुनना है ये मुख्य काम है, यो व्रत करना अथवा बहुत सा खाना ये बात उचित नहीं है। नोपवास है वर प्रोक्त है, वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है जिस उपवास से शरीर टूटता है, कमजोरी आती है, कथा में बाधा पड़ती है, वो उपवास अच्छा नहीं है। आराम से जैसे आराम से सुन सके वो करना चाहिए। कथा सुनने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोवे, पत्तलों पर भोजन करें और एक समय भोजन करें, दाल न खावे, शहद न लेवे, तेल न लेवे, गरिष्ठ अन्न न लेवे, काम क्रोध मद मान मात्सर्य लोभ दंभ मोह द्वेष इनका पहले से ही त्याग कर देवे, वेद वैष्णव ब्राह्मण और स्त्री और राजा महापुरुष बड़े आदमी इनकी कभी निंदा न करे, रजस्वला है अंत्यज है म्लेच्छ है और पतित है और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला है, वेदों की निंदा करने वाला है, उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए जब तक कथा में वो बैठा है, इनसे दूर रहे। जो दरिद्री है, जो क्षयी है, रोगी है, भाग्यशून है, पाप कर्मा है, लड़का लड़की है नहीं और मोक्ष की इच्छा है, वो कथा में आराम से बैठ सकता है। जिसको जिस माता बहन के कोई बालक नहीं होता हो अथवा बीच में ही बालक टूट जाते हो, मर जाते हो अथवा पैदा हो जाने के बाद भी नहीं जीते हो, ऐसी माता बहन है वो कथा में बड़े प्रेम से आवे और उस कथा को सुन सकती है। कथा का बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, मन में एक आनंद रहना चाहिए कि बहुत विचित्र अनुष्ठान में है, बहुत श्रेष्ठ अनुष्ठान में हम आए हैं। जन्माष्टमी व्रतमेव कर्तव्यम फलकांक्षी भी, कथा को निष्काम भाव से सकाम भाव से दोनों ही करें, पर अपने यहाँ तो निष्काम भाव ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवत प्रीत्यर्थी कथा है। कथा के अंदर भगवान की जय जयकार हो, भगवान को नमस्कार हो, भगवान का कीर्तन चले, इस प्रकार से कथा करनी चाहिए। समाप्ति के ऊपर गीता जी का पाठ किया जा सकता है। गृहस्थी व्यक्ति और संपन्न है तो दशम स्कंद के श्लोकों से आहुति परक यज्ञ भी किया जा सकता है। इस प्रकार से ये भागवत का नियम बताया, इसको सुनकर के नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इत्युक्त्वा ते महात्मानः, नारद जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, वे हर्षित होकर के कांपने लग गए, इतना उनके मन में हर्ष हुआ, परमानंद संभृत है, बड़े भारी आनंद में डूब गए। और जो ही नारद जी महाराज ये कथा की महिमा सुने हैं, सारी सभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने सनकादिकों को प्रणाम करते हुए कहा कि हे दयालु महापुरुषों, आज आपने भागवत नहीं सुनाया है, आज आपने हमको भगवान को सुना दिया है। देखो, भगवान को दिखाना होता है, एक भगवान को सुनाना होता है, आपने भगवान को सुना दिया है। अद्य में भगवान लब्ध है, सर्व पाप हरो हरि, सब पापों का नाश करने वाले भगवान, उनका आज आपने दर्शन करवा दिया है। हम और इससे ज्यादा आपकी क्या महिमा कह सकते हैं कि आपने बड़ी विलक्षण ये हमारे ऊपर दया की है। नारद जी महाराज से बोल ही रहे थे, इतने में ही ये सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु वाले हैं, ज्ञान रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान है। वे सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से झूमते झूमते भागवत के श्लोकों का पाठ करते करते, आहा निजलाभ पूर्ण है, अपने स्वरूप की उपलब्धि में इतने परिपूर्ण है कि और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। वे भागवत का पाठ करते करते उस सभा के बीच में पधारे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जो सुखदेव जी महाराज वहां पधारे, सबको आश्चर्य हुआ कि भाई भक्ति भी आई, ज्ञान भी आए, वैराग्य भी आए, और स्वयं ने जिन्होंने भागवत को अपने मुख से कहा है, सुखदेव जी महाराज आ गए। अब तो वे सब अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और देवर्षि नारद के तो टाप टाप प्रेम से आंसू आने लग गए। सुखदेव जी आप पधार गए, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, ओ ठहरो ठहरो, हम हृदय की बात कहना चाहते हैं, हमारी थोड़ी बात सुन लो आप। इतना प्रेम हुआ सुखदेव जी महाराज के मन में, वो कहने लगे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक लोगों, ये भागवत क्या है? समस्त शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। ये सामान्य वस्तु नहीं है, भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है। शास्त्र रूपी एक कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष का एक फल है कि कच्चा फल है कि नहीं, गलितम फलम, पका हुआ फल है। और पके हुए फल की क्या पहचान है? कि जिसको तोता काट खाता है वो पक्का फल होता है। इतना पका हुआ फल है कि इसको तोते ने काट लिया है, तोते के द्वारा काटा हुआ है। तो तोता कौन है महाराज? तोता हम ही है भाई। पहले हमने तोते के रूप में ही प्रवेश किया था अपनी माता के उदर में, तो सुख मुखाद, ये सुखदेव के मुख से और वैसे भी तोते के मुख से काटा हुआ फल है। और अमृत द्रव संयुत, ऐसा फल है कि इसमें केवल रस ही रस है। अमृत द्रव संयुतम, वो रस कैसा है? अमृत, अमृत देने वाला रस है, अमर रस है। इसको, इस रस को पीने के बाद कोई नहीं कहता कि मैं मरूंगा। तंतु राजन मरिष्यति, सुखदेव जी ने कहा है अंत में बारहवें स्कंद में, राजन मैं मरूंगा, ये पशुबुद्धि मत रखना। तो भागवत को सुनने वाला यही मानता है कि मैं नहीं मरता हूं, शरीर मरता है। तो ये अमृत तत्व को देने वाला विचित्र रसमय फल है, इसमें कोई चीज कठोर नहीं। अरे आम के अंदर तो छिलका त्याज्य है, गुठली त्याज्य है, डंठल त्याज्य है, केवल रस होता है, पर इसमें तो कुछ भी और चीज नहीं है। दूसरी बात, आम रस यदि खट्टा है तो उसमें थोड़ा शक्कर मिलाया जाता है, थोड़ा दूध भी मिलाया जाता है, थोड़ा उसमें और दूसरी वस्तु भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रस है इसमें और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और चीज डालेंगे तो इस रस में विरसता होगी। नहीं नहीं, केवल यही रस रहना चाहिए, ऐसा ये विचित्र रस है। इसलिए ये भागवत रूपी रस है, इसको पियो, पिबत, पियो, खूब पियो। महाराज कब तक पिए? कि आलयम, जब तक हम लोग भगवान में लीन न हो जाए तब तक इसको पीते ही रहना चाहिए। भगवान में लीन हो जाए तो कि तब भी पीते ही रहना चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। और चीजें खाएंगे तो पेट मना कर देगा या चीज मना कर दे कि बस अब चीज नहीं है मत खाओ। और चीज तो है लेकिन खाने की शक्ति नहीं है तो खाना रुक जाएगा। लेकिन भागवत एक ऐसा है कि न तो पीने वाला इससे कभी तृप्त होता है, न भागवत कभी कम होता है। इसलिए लय पर्यंत, लय तक इसको पीते ही रहना चाहिए। हे भावुक जनों, पृथ्वी के अंदर ही कोई पीना है तो यही पीने की चीज है, और कोई दूसरी चीज पीने की नहीं है। और हे ऋषियों, भागवत कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें निष्कपट भाव से आचरण करने वाले ऋषि मुनियों का वो परम मंतव्य है। जानने योग्य वस्तु का निरूपण किया है कि जिसका ज्ञान हो जाने के बाद हमारे सारे ताप दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, जब भागवत जब हमारे यहां मौजूद है तो और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जो ही भागवत सुनने की इच्छा पैदा होती है भगवान आकर हृदय में बैठ जाते हैं। मालूम चला कि भागवत होगी और हम भी जैसे तैसे समय निकाल करके सुनेंगे। बस भगवान सर, तुम सुनोगे, तुम्हारा संकल्प हो गया, इस संकल्प की पूर्ति का काम अब हमारा है। ऐसा पावन संकल्प का काम आपका है और पूर्ति का काम मेरा है, ऐसे भगवान ने विचार कर रखा है। भगवान तत्काल उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति से समन्वित भागवत का ये दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को लेना चाहिए। और हे ऋषियों, स्वर्ग में ऐसा सुख नहीं मिलेगा, सत्यलोक में भी भागवत नहीं मिलेगी। कि महाराज कैलाश लोक में? ना, कैलाश लोक में नहीं मिलेगी। तो चलो बैकुंठ में? एक ना, बैकुंठ में भगवान मिल जाएंगे लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। भगवान मिल जाएंगे लेकिन भगवान का ये दिव्य लीला प्रसाद ये बैकुंठ में भी नहीं मिलता है। बैकुंठे नास्तेयम रस है, भागवत रस वहां भी नहीं है। इसलिए अतः पिबंतु सद्भाग्या, हे श्रेष्ठ पुरुषों, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। पिबंतु, पीवो, मामा मुंचत कर्चित, और काम को भले ही छोड़ दो लेकिन भागवत सुनने को मिलता है इसको बिल्कुल मत छोड़ो, भागवत पीते ही चले जाओ। सुखदेव जी महाराज ऐसे मस्ती में बोले, जो ही सुखदेव जी महाराज यूं बोले हैं तो सभा के बीच में से, जैसे इधर भी और इधर से भी, बीच में से अकस्मात भगवान प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब प्रहलाद जी भी साथ में, बलि भी साथ में, उद्धव जी साथ में, अर्जुन आदि साथ में, सबके सब भगवान के पार्षद भगवान के सहित प्रकट हुए। अब सबके सब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग रहे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उस समय में एक आसन के ऊपर जाकर अपना स्थान रखा और देखा कि सब बड़े मस्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा भाई आप लोगों ने तो भागवत तो अपनी मर्जी से कही सुनी है, अब जरा हमारी मर्जी से एक काम कर लो। क्या करें? ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए, बोलिए महाराज आप क्या काम करें हम? अरे भाई आप सब मिलकर के कीर्तन करो। भगवान ने आज्ञा दी कीर्तन की। तो उस समय में प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौदह कांस्य धारी। अब प्रहलाद जी ने तो अपने हाथ में खड़ताले ले ली और बड़े तेजी के साथ वो तो ताल बजाने लगे। उद्धव जी महाराज वो झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद वो वीणा बजाने लगे, और तरह तरह के स्वर और आलाप निकालने वाले अर्जुन हैं वो बीच बीच में से आराप आलाप ले ले करके भगवान का कीर्तन करने लगे। इंद्र है वो नगारा बजाने लगे। बीच बीच में लोगों ने जय जयकार करनी चालू की और क्या बतावे, सरस रत्नया व्यास पुत्रो बभुवे, और उन सब के भावों को बटोर बटोर करके उस कीर्तन का महान आनंद लेने वालों में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज सबसे आगे आ गए और उन्होंने उस कीर्तन का महारस पिया। और अब भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या करते हैं, नाचने में कोई भक्ति भी कम नहीं, ज्ञान भी कम नहीं, वैराग्य भी कम नहीं। भगवान प्रकट हो जाए, भगवान के भक्त प्रकट हो जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य छिपे थोड़ी रहेंगे, वो भी वहां पर नाचने लग गए। ये एक ऐसा अलौकिक कीर्तन हुआ, भगवान सबको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, सब नाच रहे गा रहे। ऐसा दिव्य संकीर्तन देख करके भगवान ने कहा, अरे भाई सुनो सुनो ठहरो, कि महाराज क्या बात, अरे भाई आज मैं इतना खुश हो गया हूं, आज मेरे से मांगो सो देने के लिए हम तैयार हैं, जो मांगो सो देने के लिए तैयार हैं। तो सब वहां ऋषि मुनि संत महात्मा हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज पक्की बात है कि बिल्कुल पक्की बात है, मना तो नहीं करोगे कि कभी मना नहीं करेंगे? तो महाराज हमारा ये वरदान है कि जहां जहां ऐसी भागवत हो वहां सब जगह आप इसी रूप से उपस्थित हो जाओ। तो कहा बहुत अच्छी बात है। भगवान ने उसी समय में हां भर ली और ऐसे मस्ती में भगवान ने हां भरी, तथास्तु तथास्तु कहे कि सारा दृश्य वहां पर भगवान ने अपने में समेट लिया। भगवान अंतरित हो गए और अंतरित हो गए तो अब आप देखे भगवान तो अंतरित हो गए, सबको महान आनंद का अनुभव हुआ। और भक्ति सुताभ्याम सहरक्षिता सा शास्त्री स्वकीय पितदा सुखी न। अब भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, तीनों आकर सुखदेव जी को प्रणाम किए कि महाराज हम कहाँ रहे? सुखदेव जी ने कहा, देखो भाई आपको सनत कुमारों ने तो संतों के महात्माओं के हृदय में रहने के लिए कहा है, हम कहते हैं कि इस भागवत के अंदर तुम और घुस जाओ, इस भागवत में घुस जाओगे तो तुमको सदा के लिए स्थान मिल जाएगा। तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य को लेकर इस भागवत के अंदर प्रवेश कर गई। इस प्रकार से भाई भागवत का सेवन करने से भगवान का सेवन होता है, भगवान का चित्त प्रसन्न होता है, सब प्रकार की दुख दरिद्रता आदि का सबका नाश होता है, माया पिशाचिनी से दूर रहती है। इस प्रकार से भागवत की महिमा है। सोनक जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी ने भागवत कब कही, गोकर्ण जी ने कब कही, और सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से कब कही, ये आप हमको बताइए। कहते हैं भादवा की नवमी में, तो भगवान श्री कृष्ण के 30 वर्ष के बाद भादवा की नवमी में तो गोकर्ण जी ने ये कथा कही थी, सुखदेव जी ने कथा कही, और सुखदेव जी के कथा कहने के 200 वर्षों के बाद में आषाढ़ की नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी में गोकर्ण जी ने ये कथा कही, और गोकर्ण जी के 30 वर्ष के बाद नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने कार्तिक शुक्ल पक्ष में ये कथा कही है। जो आपने पूछा वो हमने बता दिया है। देखो ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो भाई भाई ये भागवत सुनो, ज्यादा तीर्थों में फिरने से कोई लाभ नहीं है। देखो हम आपको एक अत्यंत गुप्त बात और बता देते हैं। एक बार यमराज जी ने अपने सारे के सारे नौकरों को बुलाकर कहा है, बिल्कुल चुपचाप कहा है कि देखो भाई आप लोग उन लोगों के पाप को मत देखना जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा सुन ली है। तुमको तो दिखेगा कि इस आदमी ने बड़ा पाप किया है, लेकिन उसने यदि जीवन में एक बार भी कथा सुन ली है तो उसके अधिकारी आप हम नहीं हैं। उस जीव को उस कर्म का फल क्या मिले क्या नहीं मिले इसका निर्णय भगवान नारायण करेंगे। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्य निर्णाम न तो वैष्णवानाम। मैं भगवान की कथा के अंदर जो मत है ऐसे पुरुषों पर अपना जाल नहीं फैला सकता हूं, वहां मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार तो भाई भगवान की कथा से दूर है और पापी है, वहीं वहीं चलता है, भगवान की कथा वाले के पास मैं जा नहीं सकता हूं। इसलिए यमराज जी की यहां पर बातचीत हो चुकी है बड़ी सावधानी के साथ। असार संसार में विषय रूपी जहर के अंदर आकुल व्याकुल रहने वाले हे जीवों, छोड़ो दूसरी बातों को, एक क्षण के लिए ये भगवान सुखदेव के मुख से निकला हुआ जो अमृत है, भागवतामृत है, इसको पी लो। और परीक्षित साक्षी है कितनी जल्दी इसकी मुक्ति हो गई है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने भी एक दिव्य भाव में स्थित होकर के ये पावन कथा कही है। ये कथा जिसके कंठ से जुड़ जाती है और जिसके कान से जुड़ जाती है वो व्यक्ति सामान्य नहीं होते, वे व्यक्ति महान दिव्य और श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार से नियम पूर्वक इस कथा को जो सुनते हैं उनको यथार्थ वस्तु की उपलब्धि होती है, अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में उसके लिए फिर कोई भी असाध्य नहीं रहता, उसका जीवन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।
ब्रह्मा के लिए धीशम परम धीमही कह सकते थे, परंतु ये न कहकर सत्यम परम धीमही कहा तो इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत में सत्य तत्व का वर्णन मिलेगा, किसी एक साधना का, किसी एक इष्ट का, किसी एक संप्रदाय का इसमें वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत सबको लेकर चलने वाला दिव्याति दिव्य पावन पुराण है। श्रीमद् भागवत का ये शब्द है धीमही, यह वैदिक शब्द है, तो श्रीमद् भागवत हमको वैदिक धाराओं से भी जोड़ता है और मूल में ये सत्य के साथ भी जोड़ता है। जैसे वेद अनादि है, वेद अपौरुषेय है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का जो वास्तविक तत्व है वो अनादि है, अपौरुषेय है। अब उस सत्य तत्व के विषय में बताते हैं कि जन्मादि यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। वो सत्य तत्व क्या है? अब देखिए सत्य के लिए कितना स्पष्ट वर्णन करते हैं कि यत अस्य जन्मादि। देखो सत्य किसी भी पदार्थ का निरूपण करना पड़ता है तो उसके लक्षण करने पड़ते हैं। लक्षण दो प्रकार का होता है, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण माने किसी और का नाम लेकर लक्ष्य की ओर इशारा करना, वो तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण माने लक्ष्य को लेकर के ही कहना, वो स्वरूप लक्षण है। तो भागवत के इस मंगलाचरण में दोनों बात मिलेगी, सत्य तत्व का ताटस्थिक लक्षण भी किया गया है और सत्य तत्व का स्वारूपिक लक्षण भी किया गया है। माने हर दृष्टि से, आगे से, पीछे से, बीच में से, कहीं से भी ले, जैसे मिठाई से भरी हुई थाली में कहीं भी आप हाथ लगावे वो मीठा ही मिलेगा, ऐसे ही भागवत को कहीं से भी आप लेवे उसमें सत्य तत्व मिलेगा। उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यतो अस्य जन्मादि। अब ये कितना विचित्र पद दिया है कि जन्मादि यस्य यत है, ये का ये पद दिया है ब्रह्म सूत्र में। ब्रह्म सूत्र है ये हमारे प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत माना जाता है, वेदांत का खास सूत्र माना जाता है। तो उसमें ब्रह्म सूत्र में प्रारंभिक सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने सब प्रकार की अधिकारिता से संपन्न हो और समदम आदि लक्षणों से समन्वित हो, तो उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। माने किसी भी ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय माने चार चीजें होना, एक विषय है, एक अधिकारी है, एक संबंध है, एक प्रयोजन है। ये चार चीजें होती हैं, तब जाकर वो ग्रंथ हमारे हृदय में उतरता है। तो ब्रह्म सूत्र में सबसे पहले उस साधक को समाधि संपत्तियों से संपन्न होना पड़ता है, वैराग्य उसमें जरूर होना चाहिए, उसके बाद उसमें ब्रह्म जिज्ञासा होगी, तब उसको ये ब्रह्म सूत्र की अधिकारिता मिलेगी। परंतु भागवत में ये चारों बात नहीं है। भागवत एक वो माँ के समान है कि जो माँ बेटे की ओर ही देखती है, अपने जो वात्सल्य है केवल उसी वात्सल्य के कारण से बेटे के साथ प्रेम करती है, बेटे ने क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं देखती, लेकिन पिता ये देखते हैं कि अच्छा व्यवहार बेटा करता है तो प्रेम करते हैं पिता, और नहीं करते हैं तो इतना प्रेम नहीं करते। परंतु माँ का हृदय बहुत उदार होता है। ऐसे ही भागवत को सुनने वाले के लिए ये शर्त नहीं रखी कि वो सर्वथा निष्पाप हो, वो समाधि षट संपत्ति से युक्त हो, परम वैराग्यवान हो, बहुत बड़ी ब्रह्म की जिज्ञासा हो, ऐसी उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी है। माँ जैसे बेटे से मिलने के लिए कोई शर्त नहीं रखती, ऐसे ही श्रीमद् भागवत सुनने वालों के लिए कोई शर्त नहीं रखती है। इसलिए यहाँ अनुबंध चतुष्टय का कोई प्रश्न यहाँ नहीं रखा है। जन्माद यस यतोन्वयाद समझने के लिए बताते हैं कि ये सत्य तत्व क्या है कि जिससे इस जगत का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और अंत में प्रलय होता है। ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण किया है। माने जगत के निरूपण के साथ परमात्मा का निरूपण किया कि भाई जगत की उत्पत्ति दिखती है तो ये कोई एक ऐसा तत्व है जो अनुत्पन्न नहीं है, अनुत्पन्न तत्व से ही उत्पन्न की उत्पत्ति होती है और वही उसको आधार देता है और वही आधार देकर वही उसको अपने में समेटता है। देखो सड़क पर कार चलती है, सड़क पर कार चलती है, कार चलती है, इसका अर्थ है कि सड़क है, कोई मार्ग है। हमने मार्ग को नहीं देखा लेकिन किसी कार को चलते हुए देख लिया तो हम अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ जरूर मार्ग है, नहीं तो ये कार कैसे चलती। तो कार की गति से हम लोग जैसे सड़क का अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही उत्पन्न होने वाले जगत से हम अनुत्पन्न सत्य तत्व का सहज अनुमान लगा सकते हैं। और प्रलय भी होता है, माने जो मार्ग जाता है वो जाकर कहीं कहीं समाप्त भी होता है। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होकर वो नष्ट भी होती है, नष्ट का भी कोई न कोई आधार चाहिए, उत्पत्ति का आधार और नष्ट का आधार, नाश का आधार जो है वो सत्य है, उसमें कोई किसी प्रकार से विकृति नहीं आती, वो निर्विकार रहता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि भाई ये सृष्टि तो बनती है लेकिन क्या बनाने वाले को पूरा ज्ञान है, वो जानता है कि सृष्टि है कि बिल्कुल जानता है, क्योंकि कोई भी कर्म है वो कर्म ज्ञान के बिना नहीं बनता। तो अर्थेषु अभिज्ञ है, जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में वो अनुगत है और उन सब को वो अभिज्ञ माने जानता है। जानता है इतना ही नहीं, अर्थेषु अन्वयात, जितने पदार्थ हैं उन सब में वो अन्वित है, अन्वित माने वो स्वयं है। देखो ये भारतीय परंपरा मिलेगी, सनातन धर्म में ही ये बात मिलेगी कि परमात्मा संसार को बनाते हैं और परमात्मा ही संसार के रूप में बनते हैं। इतना व्यापक विचार हमारे दार्शनिकों का होगा, औरों का नहीं होगा। दूसरे लोग हैं वो परमात्मा को मानते हैं परंतु संसार को बनाते हैं, इतना ही मानते हैं। बना करके जैसे किसी काम को हमने बना दिया, कर दिया, करने के बाद हम उससे अलग हो गए तो उस कार्य में और उस कर्ता में भेद मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की परंपरा बड़ी विचित्र है कि कार्य भी वही है और कर्ता भी वही है, कर्ता ही कार्य रूप में परिणित हुआ है। ऐसा विचित्र विलक्षण विचार हमारे दार्शनिकों का रहा है। तो अर्थेषु अन्वयात, सारे पदार्थों में वो अन्वित है, कोई जगह उस परमात्मा से खाली नहीं है। और इतना होते हुए भी क्या इन पदार्थों के नाश होने पर उस परमात्मा का भी नाश हो जाता है? जैसे उस पदार्थ के अंदर रूप है, तो पदार्थ के नष्ट होने पर उसका रूप भी नष्ट होता है, पदार्थ के नष्ट होने पर उसकी आकृति बदल जाती है, तो क्या ऐसे परमात्मा भी संसार के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाने चाहिए कि ना? व्यतिरेकात अन्वयाद इतरतः, माने वहां परमात्मा अलग रहते हैं। अलग का अर्थ परमात्मा का नाश नहीं होता और इस जगत का नाश होता है, तो नाश होने में परमात्मा वैसे के वैसे रहते हैं, और जब संसार दिखता है तो इसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे रहते हैं, वो सत्य तत्व वैसा का वैसा रहता है। और इतना होते हुए भी वो अभिज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, उसको जानने के लिए और प्रकाश की आवश्यकता नहीं। सूर्य को जानने के लिए जैसे और प्रकाश की आवश्यकता नहीं कि भी सूर्य को देखें, बैटरी लाओ, लाइट लाओ, सूर्य को देखेंगे, क्या देखना? सूर्य स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही सारा जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, उस तत्व को प्रकाशित करने के लिए और किसी तत्वांतर की आवश्यकता नहीं, सत्यांतर की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं। और जासु सत्यता ते जड़ माया, उसी प्रकाश के कारण से ये सारा का सारा जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वो सत्य तत्व सभी के द्वारा स्वीकार्य है। अब प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा ने जगत को बनाया तो क्यों बनाया? ये क्यों बनाया प्रश्न इतना व्यापक है, अनादि काल से इसके ऊपर विचार चल रहा है, परंतु भागवत ने बहुत सुंदर और हल्के ढंग से इसका समाधान किया कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। माँ के मन में आता है कि मैं बेटे को प्यार दूं, अब वो बेटा सोया हुआ है तो माँ कैसे प्यार करेगी? माँ पहले उसके लिए लड्डू वगैरह खाने की चीजें बनाती है, और बालक सोया हुआ है तो माँ है उस बालक को जगाती है, बहुत प्यार से जगाती है। बालक नहीं जगता है तो भी प्यार से जगाती है, और जगाने के बाद माँ उसके साथ में खेलती है, उसको हंसाती है, और बालक की पुष्टि से माँ को बड़ा पोषण मिलता है, माँ के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक ऐसे ही प्रलय अवस्था में संपूर्ण जीव परमात्मा के अंदर सोए हुए रहते हैं, उस समय में परमात्मा के मन में एक प्यार पैदा होता है कि मैं इन जीवों से प्रेम करूं, एको हम बहुश्याम, मैं इनके साथ रमण करूं, खेल खेलूं, और ये जीव मेरे से सुखी होंगे, और जीव के सुख से, जीव के परम आनंद से मैं सुखी होऊंगा। ऐसा विचार करके, ऐसा संकल्प लेकर के भगवान संसार को बनाते हैं, तो बनाने के पीछे ठीक वैसा ही भाव है जैसे माँ जीव जे माँ बेटे को जगाती है, ऐसे ही भगवान इन सारे जीवों को जगाते हैं, पैदा करते हैं, सृष्टि के अंदर उनको स्थान देते हैं। परंतु जैसे माँ पहले व्यवस्था करती है पुत्र के लिए, ऐसे ही भगवान भी व्यवस्था करते हैं, वे ब्रह्मा के बहाने से एक बड़ा विचित्र ज्ञान सारी सृष्टि को देते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्म तेने, माने उस आदि कवि के लिए, उस ब्रह्मा के लिए उन्होंने ब्रह्म माने वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने वेद, तो उस आदि ब्रह्मा के लिए ब्रह्म दिया, माने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, कारण कि इनको दिया हुआ ज्ञान ही जीवों में आएगा। तो ये ज्ञान देना ठीक वैसे ही है जैसे माँ बालक के लिए चीज बनाकर रखती है और बालकों को देती है, ऐसे ही भगवान भी अपने संकल्प से संसार को बनाते हैं और ब्रह्मा जी के बहाने से सबको ज्ञान देते हैं, कारण कि ज्ञान के द्वारा ही इस जीव का महान आनंद जो खोया हुआ है वो मिलेगा, और इस महान आनंद में जब जीव रहेगा तो यही परमात्मा के लिए बहुत खुशी की, प्रसन्नता की, आनंद की बात होगी। ऐसा विलक्षण ज्ञान दिया है कि यत सूर्य मुह्यंति, यत माने यस्मिन, जिस ज्ञान के विषय में सूरी लोग माने बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी, बहुत बड़े कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं, हर किसी के बुद्धि के द्वारा गम्य नहीं है, ऐसा विलक्षण दिव्याति दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। तो हर किसी के बुद्धि की बस की बात नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञान कोई बड़ा कठिन है और हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इस अर्थ में ये तात्पर्य नहीं है। वो इतना विलक्षण है कि ऐसा ज्ञान परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दे नहीं सकता है, उसमें विलक्षणता बताने के लिए बात है। इस प्रकार से भगवान ज्ञान देते हैं। और तेजो वारी मृषाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में थल का, थल में जल का बहम होता है, ऐसे ही सृष्टि वास्तव में वासुदेव सर्वम भगवत स्वरूप है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान से अलग है। हम जो कुछ सामने आंखों से देखते हैं, जो कुछ हम कानों से सुनते हैं, जो कुछ हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सब का सब भगवान से पैदा हुआ है और भगवान का ही स्वरूप है। अब कोई कहे कि भाई हमारे सामने पुस्तक है, तो ये पुस्तक भगवान का स्वरूप कैसे हम कैसे माने? हमारे ये कपड़ा है, ये भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तो कैसे माने? तो इसको मानने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि हमारे सामने कपड़ा है, तो विचार करना चाहिए कि कपड़ा काय से बना है कि सूत से बना है, सूत काय से बनता है कि कपास से बनता है, कपास कहाँ से आया कि जमीन के अंदर से आया, जमीन कहाँ से आई कि पानी से आई, पानी कहाँ से आया कि आग से आया, आग कहाँ से पैदा हुआ कि वायु से पैदा हुआ, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से, अहंकार वो महतत्व से, महतत्व है वो प्रकृति से, और प्रकृति परमात्मा से। जैसे किसी आदमी का गोत्र है तो चलते चलते अंत में उसका गोत्र परमात्मा में जाकर लीन होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जिसके अंत में परमात्मा नहीं ठहरते हो। बाप दादे चलते 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 अंत में आकर वो ब्रह्मा से निकले हुए ठहरेंगे, और ब्रह्मा है वो परमात्मा से निकले हुए हैं। तो सारे के सारे जीव परमात्मा से निकले हुए, सारी की सारी वस्तु परमात्मा से बनी हुई, तो परमात्मा ही सृष्टि के रूप में है। परंतु हम लोगों को बहम हो गया, जैसे जल में थल का बहम होता है, थल में जल का बहम होता है, मृग मरीचिका में जहां सूर्य की किरणें हैं और अपने आंखों का जो पानी है वही पानी हमको आगे जमीन पर दिखता है, है तो अपना पानी दिखता है जमीन पर कि ओ वहां पानी है, ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी पानी में डूब रहे हैं, परंतु वहां जाके देखते हैं तो वहां पानी नहीं मिलता। इसी प्रकार से सारा का सारा जगत है तो परमात्मा स्वरूप, हमने इसको जगत मान लिया, जगत मानने से हमको इस जगत की उपलब्धि नहीं होती। आज तक ये संसार किसी को मिला नहीं, न किसी को शरीर मिला है, न किसी को कुटुंब मिला है, न किसी को पदार्थ मिले हैं, ये मिलते ही नहीं है, मिलने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो जहां सारा का सारा ये जगत है, ये मिथ्या जगत भी सत्य की तरह से प्रतीत होता है, वो वास्तव में सत्य तत्व है। वो सत्य तत्व क्या है कि निरस्त कुहकम, माया से सर्वथा रहित है, ऐसे सत्य तत्व का हम चिंतन करें, ये भागवत का पावन उद्देश्य है। देखो ये भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि आया है, और जिस दिन भागवत की समाप्ति होगी उस दिन भी अंत में सत्यम परम धीमहि यही श्लोक आएगा। माने भागवत का आदि और भागवत का अंत, ये आदि और अंत में जो होता है वही बीच में होता है। तो जैसे सृष्टि के आदि में सत्य है और सृष्टि के अंत में भी सत्य है, बीच में हमको सृष्टि भासित होती है, बीच में भी केवल सत्य ही है, ऐसे ही भागवत भी सत्य का ही निरूपण करती है, आदि में सत्य से ही उपसंहार करते हुए केवल उस सत्य तत्व को बताती है जो संप्रदाय निरपेक्ष है, एक साधन पद्धति से चलने वाला नहीं है। तो उस सत्य तत्व को किसी भी प्रकार से हम प्राप्त करें, ये भागवत का पावन उद्देश्य है। इस भागवत के अंदर उन ऋषि मुनियों का दिव्याति दिव्य धर्म बताया है कि जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, भागवत का जो सत्य तत्व है वो शिवदम सबका कल्याण करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला है। और तापत त्रयोन्मूलनम, और त्रिविध तापों को ये सत्य तत्व दूर कर देता है। सत्य प्रकाशवान भी है, अतः अंधेरे से जैसे व्यक्ति को प्रकाश मिलता है तो उससे जड़ता और भय और अंधकार तीन चीजें दूर होती हैं सूर्य से, ऐसे ही उस सत्य तत्व से हमारी जड़ता दूर होती है, हमारा भय दूर होता है और हमारा अज्ञान दूर होता है। इस प्रकार से भागवत के रहते हुए और शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है, भागवत के सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर आसन लगा लेते हैं। इस बात को हमें बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत बताया था कल सुखदेव जी ने भी कि ये शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का एक ऐसा पका हुआ फल है, बड़ा रसमय फल है, और फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए छिलका रहता है और गुठली भी रहती है, परंतु गुठली और छिलके से बिल्कुल अलग एक अमृतमय द्रव है, और उस द्रव को, उस पेय को हरदम पीते रहना चाहिए जब तक भगवान में प्रेम न हो जाए, और जब तक हम लोग अपना कल्याण न कर लेवे तब तक कि उसके बाद भी हम पीते ही पीते रहे। यह ऐसा रस है कि इसका अंत नहीं है और पीने वाली की प्यास कभी बुझती नहीं है। पीने के लिए पेय भी बहुत हो और पीने वाले में शक्ति भी खूब हो, अब अनंत तो रस है और अनंत ही उसका आस्वादन है और अनंत ही पीने वाले की शक्ति है। कितना दिव्य रस मिलता होगा और कितना दिव्य उनको आनंद मिलता होगा, ये तो वे ही उस रस को पीने वाले हैं जान सकते हैं। वास्तव में संसार में जन्म लेना हमारे लिए इसी रस को पीने के लिए है। नैमिषारण्य के अंदर सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और वे सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से तरह तरह की इतिहास संबंधी बातें पूछ रहे हैं। देखो, आप भागवत के वक्ताओं पर विचार करना, भागवत के वक्ता कैसे हैं, भागवत की परंपराएं कैसी हैं, इनमें कोई तो कैसे मिलेंगे। जैसे सोनकादि ऋषि हैं, ये मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुनते हैं, परीक्षित ने मुक्ति के लिए भागवत सुना। देखो, भागवत को कहा है प्रारंभ में भगवान नारायण ने ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा से कहा है कि सृष्टि में ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा ने नारद को इसलिए कहा है कि नारद ने पूछा है तो नारद की जिज्ञासा दूर हो जाए। नारद ने आकर वेदव्यास को इसलिए भागवत कहा है कि लोगों का कल्याण हो जाए। और वेदव्यास जी से सुखदेव को भागवत क्यों मिली है, क्योंकि भागवत के परम अधिकारी सुखदेव जी महाराज हैं, तो सुखदेव जी के बहाने से दुनिया को मिल जाए, इन लोगों का सुनना और दृष्टि से है। शौनकादि ने भागवत इसलिए सुनी है कि यज्ञ के बाद जो बचा हुआ समय है वो हमारा पवित्र हो जाए, परंतु परीक्षित ने जो भागवत सुनी है वो केवल अपने कल्याण के लिए भागवत सुनी है। इसलिए जितने श्रोता हैं भागवत के, उन समस्त श्रोताओं में परीक्षित का सबसे ऊंचा स्थान है। तो सूत जी महाराज के पास में शौनकादि ऋषि गए, कहने लगे महाराज इस समय तो हमने यज्ञ आदि बंद कर दिया है क्योंकि बीच में विराम चाहिए, प्रातः काल से इस यज्ञ वगैरह कर चुके हैं, प्रातर हुत हुताग्नय है, प्रातः काल ही यज्ञ आदि का सब काम पूरा कर लिया। और फिर वे सूत जी के पास में गए कि महाराज आप इतिहास और पुराणों को सुनाओ। तो सूत जी महाराज अपनी तरफ से बात सुनाते हैं, परंतु ये बात ध्यान में रखनी है कि शौनकादि अपने समय की पवित्रता के लिए सुन रहे हैं, उनके मन में भागवत को सुनने के बाद जो भाव पैदा होगा वो आप बीच में जहां जहां प्रश्न करेंगे उनको स्वयं को ये अनुभव होगा कि आह, हमने यज्ञ करके धुएं को फैला करके और इतना बढ़िया काम नहीं किया है जितना भागवत सुनने से जीव का लाभ होता है। यज्ञ का श्रीमद् भागवत में कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं है जितना ऊंचा स्थान जीव के कल्याण की तरफ किया गया है विचार भागवत में। तो वे शौनकादि ऋषि सूत जी के पास आकर बड़ी नम्रता से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आपने तो बहुत से इतिहासों का, पुराणों का अध्ययन किया है और दूसरे ऋषि मुनियों ने जो कुछ जाना है उनसे आपने कुछ विलक्षण ही जाना है, कारण कि भगवान वेदव्यास जी ने जो कुछ लिखा है उसको समझ पाना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। तो आपने जितना जो कुछ सुना है उस सुने हुए के आधार पर जो निर्णय किया है वो आप हमको बताइए। आप यूं कह सकते हैं कि भाई हमने पुराण पढ़े सुने, तुम भी सुन लो, कि महाराज एक सुनना होता है और एक सुनकर के जिसने मनन किया है, अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर जो हमको बात मिलती है, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इसलिए आप हमारी इस जिज्ञासा को दूर कर दीजिए कि इन पुराणों का सबका सार क्या है, मनुष्य को क्या काम करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। ये पहला स्कंद और पहला अध्याय, इसमें 6 प्रश्न है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन 6 प्रश्नों का ही श्रीमद् भागवत में अंत तक उत्तर दिया गया है। तो पुंसाम एकांतत श्रेय है, मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण किससे होता है ये हमको बताइए। समस्त शास्त्रों का सार क्या है वो हमको बताइए। और तीसरी बात हम आपसे पूछते हैं कि भगवान वासुदेव और देवकी के यहां जन्म लिए हैं, संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लिए हैं हमको मालूम है, और ये भी हम जानते हैं कि उनके जन्म लेने से कितना जगत का कल्याण हुआ है। उनका कोई नाम भी ले लेता है, विवश होकर के भी नाम ले लेता है तो वो उसको पवित्र ही कर देता है, जैसे गंगा जी पवित्र करती है। परंतु फिर भी क्या बतावें, उनका यश सुनने के लिए बार बार हमारा मन लालायित होता है। हम चाहते हैं कि भगवान के उस पावन यश को हम सुने, बलराम जी को साथ में लेकर तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि, उनके उदार गीतों को जो कुछ आप जानते हैं सुने हैं वो आप हमें भी बताइए। महाराज भागवत की कथा आप कहेंगे, अवतारों की कथा कहेंगे, तो ये सुनने वालों के लिए बहुत रसमयी कथा होगी। स्वादु स्वादु पदे पदे भागवतामृत के एक एक घूंट में बड़ी मिठास है और बड़ी शीतलता है। प्यास लगी हुई हो और कोई व्याकुल हो रहा हो, ठंडा जल पिलाया जाए तो प्यास दूर होती है, इतनी बात नहीं है। वो जल जीभ के लिए भी अच्छा लगना चाहिए, वो ठंडा भी होना चाहिए और प्यास को भी दूर करने वाला हो। इसी प्रकार से ये भागवतामृत है, भगवान की अवतारों से समन्वित जो कथा है, ये ऐसा दिव्य अमृत है कि एक एक घूट में शीतलता है, एक एक घूट में मिठास है और एक एक घूट से हमारी तपन दूर होती है। तो महाराज हम लोग किसी प्रकार से इसमें उगताने वाले नहीं है। भगवान ने जो अतिमर्त्य कर्म किए हैं उनको आप हमें विस्तार के साथ सुनाओ। और एक अंतिम हमारा प्रश्न यह है, योगेश्वर भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ करके और अपने धाम में चले गए, माने भगवान कभी पृथ्वी को छोड़ते नहीं है, सर्वव्यापक है, वो कहां तो छोड़ेंगे और कहां जाएंगे, पर छोड़ना क्या है उनका, उनका छोड़ने का मतलब अपना अवतार शरीर जब अपने में समेट लेते हैं उस समय में धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। और जब अवतार को अपने में समेट लिया तो फिर आप बेचारा धर्म किसके आश्रित रहा ये हमको समझाइए। वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि ऐसा बड़ा विलक्षण प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज संप्रश्न संधिष्ट है। देखो सम दो जगह लगाया है इस पद में, संप्रश्न और संधिष्ट है, माने बहुत ही तो उत्तम प्रश्न है और उससे सूत जी महाराज के हृदय में हर्ष नहीं हुआ, अत्यंत हर्ष हुआ। कारण कि किसी आदमी को समय मिलता हो और उस समय में यदि वो भगवान की कथा को सुनता हो, भगवत संबंधी चर्चा करता हो और भगवत संबंधी चर्चाओं को सुनता हो, इससे बढ़कर और क्या प्रसन्नता की बात होगी। बहुत वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए इतनी बात नहीं, प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, उन्होंने उनके वचनों का बहुत आदर किया, पूजन किया। देखो कहीं व्यक्ति का पूजन होता है और कहीं और किसी का पूजन होता है, यहाँ वचनों का पूजन हुआ। ध्यान देवें वचनों का पूजन तो सूत जी के वचनों का होना चाहिए था, यहाँ शौनकादि तो प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न की इतनी पूजा कि आह सूत जी महाराज देखते हैं कि यही प्रश्न है जो मुझे कहाँ के कहाँ ले जा रहे हैं, कितना विचित्र ज्ञान जो मैंने सुना है उस ज्ञान की ओर इसी प्रश्न ने हमें ले जाकर रख दिया है, तो ये सामान्य वचन नहीं है, प्रतिपूज्य वचस्तेषाम। जब जिज्ञासु बड़ी सरलता से और सच्चाई के साथ किसी महापुरुष की शरण में जाता है और अपने हृदय की बात रखता है, तो उस महापुरुष के हृदय में कितना आनंद छाता है वे महापुरुष ही जान सकते हैं। हम लोग इन वचनों से, इन वाक्यों से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पूछने वाले के जितनी प्रसन्नता होगी सुनने पर, उससे ज्यादा चौगुनी प्रसन्नता महापुरुषों के हृदय में होती है। क्यों? कि उनके मन में आता कि ओहो, चलो कोई कल्याण की तरफ चलने के लिए पैर तो रखा है। मातृ हृदय होता है महापुरुषों का, कि जैसे माँ बालक की स्वस्थता से स्वयं स्वस्थ होता है, स्वस्थ होती है, इसी प्रकार से साधक के कल्याण से महापुरुष हैं वे बड़े प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज अब मंगलाचरण करते हैं कि यम प्रव्रजन तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। वे सुखदेव जी महाराज हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, जो सदा सर्वदा निर्विकार हैं, अतएव उनके लिए संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। जिनके पिता भी जिनके पीछे पीछे चलते रहे और बेटा बेटा करके आवाज लगाते रहे, उन सब बातों को सारी प्रकृति ने सुना है। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज चल रहे हैं। मानो सुखदेव इतने महत्वपूर्ण हैं कि व्यास के द्वारा भी वो खोजे जाने योग्य हैं। जो व्यास भगवान के अवतार, जो व्यास वेदों का विभाग करने वाले, जो व्यास इतना सब कुछ जानकार, वो भी आज सुखदेव को ढूंढ रहे हैं, उसको चाह रहे हैं। ऐसे मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। और ध्यान देवे, इसी प्रणाम के अंतर्गत एक श्लोक और है, यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीनाम। सारे ऋषियों के जो गुरु हैं सुखदेव जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने संसारी लोगों को कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए बड़ी करुणा से ये भागवत कही है। अब देखें, भागवत का विशेषण देते हैं कि ये भागवत क्या है, कि स्वानुभवम, ये स्वानुभव है, ये प्रत्येक का अनुभव है। जो जीव का अनुभव है वो भागवत में आया है, और जो एक सामान्य का अनुभव है वो भी भागवत में आया है। भागवत हमारा जीवन है और भागवत हमारे अनुभव को बताने वाला है, स्वानुभवम। और अखिल श्रुति सारम, ये संपूर्ण वेदों का सार है, और संसार से पार होने वालों के लिए ये एक नौका है। इतना होते हुए एक ऐसा विचित्र पद दिया है कि अध्यात्म दीपम, ये अध्यात्म का प्रकाश है। याद रखें, यही अध्यात्म दीपम पद है, ये दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में भी आया है। वहां भी देवकी जी ने जब स्तुति की है भगवान की, तो वहां भगवान को अध्यात्म दीप कहा है। अध्यात्म दीप भगवान और अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत महापुराण, इससे सिद्ध होता है कि भागवत और भगवान दोनों एक हैं, क्योंकि भागवत के लिए भी अध्यात्म दीप शब्द आया और भगवान के लिए भी अध्यात्म दीप शब्द आया है। तो ये अध्यात्म का प्रकाशक है। और गुह्यम पुराणम, ये जितना पुराण गोपनीय है, ये अत्यंत गोपनीयों से गोपनीय है। गोपनीय माने बहुत मूल्यवान, ये श्रीमद् भागवत कही है सुखदेव जी ने। ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। और देखो भागवत में क्या प्रणाम, पहले सुखदेव जी को, अब उसके बाद करते हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को प्रणाम करता हूं। अब कोई कहेगा कि भाई पहले सुखदेव जी को प्रणाम किए हो, उसके बाद तुम नारायण को प्रणाम किए हो, कहीं भगवान का निरादर तो नहीं हो गया? क्या? नहीं नहीं, भगवान का निरादर कभी होता ही नहीं। भगवान का भाव समझना चाहिए कि भगवान क्या है, ये भगवान का भाव क्या है। ये दशम स्कंद के 86वें अध्याय के अंतिम पद से मालूम होगा कि भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्तों की भक्ति करने वाले हैं। और यहाँ भगवान का चरित्र लिखा जाएगा, भगवान के चरित्र के लिखने में कहीं कोई कमी रह जाए तो भगवान सह लेते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भक्तों की
क्रियाकलाप में भक्तों के नम्रता, भक्तों के प्रति नम्रता में कमी रहे, भक्तों का कहीं सम्मान कम न हो जाए, ये भगवान का ध्यान रहता है। और यदि भक्तों के आदर में कमी रह जाए तो ये भगवान को सहन नहीं होता, क्योंकि जैसे भक्त है उसके लिए सब कुछ भगवान है, ऐसे भगवान के लिए सब कुछ है वो भक्त है। तो वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज के प्रणाम के बाद यहाँ नारायण को प्रणाम किया है, कहते नारायण को और नरोत्तम नर को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ततो जयम उदीरयेत। और सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हम इस श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि हे साधो, हे शौनकादि ऋषियों, आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न से हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है, इसलिए आपके इस प्रश्न से लोक मंगलम, सारे संसार का मंगल होने वाला है। तो लोक मंगल प्रश्न से हमारा मन भी प्रसन्न हुआ और आगे तक इस जगत में प्रसन्नता छाती रहेगी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखो, आपने ये पूछा कि ये धर्म किसकी शरण में गया, अरे धर्म के ऊपर किसी एक की ठेकेदारी नहीं है, धर्म किसी एक की वस्तु नहीं है। आप पहले धर्म का तत्व तो समझिए कि वास्तव में धर्म क्या है, कि सवई पुंसो परो धर्म है, सवई पुंसाम परो धर्म है यतो भक्ति अधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि अधोक्षस भगवान में हमारी भक्ति हो जाए, इससे ऊंचा और कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं है। भगवान में एक भक्ति हो जाएगी तो उससे ज्ञान और वैराग्य स्वतः हो जाएगा, हमारे हृदय में बड़े आनंद की लहरें उठेंगी, ये न आत्मा सम प्रसीदति। इस प्रकार से सबसे बड़ा धर्म है भगवान में भक्ति होना।